يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. یہ کتنا خوبصورت اعلان ہے دیکھیں، قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے نا اپنی قبروں سے تو اتنی گھبراہٹ ہوگی، اندازہ کیجئے، ہم ذرا سی بھی کیا اس ہو، ذرا کہیں کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہی دیکھ لیں تو وہاں پہ ہی ہماری ہمیں گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی. قیامت کا دن اتنا ہولناک ہے کہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ہر طرف افراتفری کا عالم. اب انسان کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرا دن فیصلے کا آگیا. انسان پریشان ہے، انسان اب اس پریشانی کے اندر گھبراہٹ کے اندر لوگ بھاگ رہے ہیں، ایک طرف کسی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ قبروں سے اٹھ رہے ہیں. ایسے کے اندر، ایسے وقت کے اندر ظاہر ہے سب کو گھبراہٹ ہوگی، لیکن پھر ایک اعلان ہوگا. یہ اعلان کیا ہوگا؟ یا عبادی، اے میرے بندو، تم پر آج کے دن کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، نہ خوف ہے اور نہ غم ہے تمہیں آج کے دن. خوف کس کا ہوتا ہے؟ جو وقت آنے والا ہوتا ہے، مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں نا، انگزائٹی ہوتی ہے مستقبل کی. اور غم کس کا ہوتا ہے؟ جو پہلے گزر چکا، اس کا غم کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ اس کا غم ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب منادی قیامت کے دن یہ ندا کرے گا، اے میرے بندو، آج نہ تم پر خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، تو تمام لوگ اپنے سر اٹھا کر کہیں گے ہم اللہ کے بندے ہیں. اب کتنا شوق ہو جائے گا سب کو اللہ کے بندے بننے کا، دنیا میں تو بن کے رہے نہیں، لیکن اس دن کہیں گے ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اللہ اکبر. پھر دوسری ندا آئے گی اور کہا جائے گا، یہ جو آگے آ رہا ہے، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مسلم بن کے رہے، اطاعت گزار بن کے رہے، تو کفار اپنے سروں کو جھکا لیں گے اور جو توحید والے ہیں ان کے سر اٹھے رہیں گے. پھر تیسری منادی آئے گی اور کہا جائے گا، جو لوگ ایمان لائے اور متقی رہے، تو اب وہ لوگ جو گناہ کرنے والے تھے اور خاص طور پہ کبیرہ گناہ کرنے والے، وہ اپنے سروں کو جھکا لیں گے، اور صرف متقین جو ہوں گے وہ اپنے سروں کو اٹھائے رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ان سے خوف اور غم سب دور کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو خوف میں نہیں رکھتا. ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو دوست ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم. تو اس وقت جب یہ ندا آئے گی تو کتنا انسان کو تسلی ہو جائے گی کہ آج اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے کہ میرے بندوں کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے بندے بن کے رہنا ضروری ہے نا. جب انسان اپنے من کا بندہ بنتا ہے، اپنی مرضی کا بندہ بنتا ہے کہ میں نے وہ کرنا ہے جو میرا دل کرتا ہے، مجھے یہ پسند نہیں آتا اور یہ پسند آتا ہے، میں پک اینڈ چوز کرنے لگتی ہوں، تو پھر اللہ کی بندگی تو نہ ہوئی نا. اللہ کی بندگی تو ٹوٹل بندگی ہے، ٹوٹل سبمیشن ہے، کیونکہ آگے کیا ہے، کون سے وہ اللہ کے بندے، یا عباد میں کون ہے، الذینہ، وہ اللہ کے بندے جو آمنو بھی آیاتینا، جو ہماری آیات پر ایمان لے کر آئے. دیکھیں ایمان لانا کا مطلب ہوتا ہے مان جانا نا. ہم کہتے تو سارے ہی ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی آیات کو مانتے ہیں، لیکن جب ہم استغفر اللہ بعض دفعہ اللہ کی آیات کے اندر ہی مین میخے نکالنے لگے، یا اللہ کی آیات کو ہی کچھ نہ سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ تو میں نہیں یہ کر سکتی بھائی، تو کیا ماننا ہوا؟ ماننا تو دل سے بھی ہے، عمل سے بھی اس کو کر کے دکھانا وہ ماننا ہوتا ہے. آپ نے مان لیا مثلاً کہ آج جو انہوں نے نیوز دی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ آج بڑا طوفان آنے والا ہے، تو آپ نے جب مان لیا یہ، تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ایویکویٹ کر جائیں، یا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بہت طوفان آنے والا ہے، اتنے دن تک ہر چیز بند ہو جائے گی، تو آپ بھاگیں گے گروسری سٹور پہ پہلے کھانے پینے اور پانی کا انتظام کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کی بات مان لی تھی نا، آپ کو یقین تھا کہ اس کی بات سچی ہے. جو اللہ کی آیات کو مان لیتا ہے نا، اس کے بعد وہ ایسے نہیں بیٹھ جاتا، پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ آیات میں کئی چیزوں کو چھوڑنے کا حکم ہے، کئی کچھ کرنے کا حکم ہے، یہ ماننا کیا ہوا کہ ہم نے مان لیا اور بس ٹھیک ہے، زبانی مان لیا، زبانی کہہ دیا مان لیا، تو اس سے ماننا ہو گیا؟
एक औरत कहती है कि मैंने तुझे अपना शौहर मान लिया, तो उसके बाद क्या कुछ हकूक हैं उस शौहर के इसके ऊपर, या कुछ भी नहीं, या वो और आदमियों के साथ चली जाए? नहीं, जब मान लिया कि ये मेरा शौहर है तो बस उसके साथ ही उसके ताल्लुक होगा। अल्लाह की आयात को जो मानते हैं, फिर वो अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं, इन आयात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। और दूसरी बात, अल्लाह की आयात को मानना ये नहीं है कि कुरान करीम तो वहां पढ़ा हुआ है, आयात वहां पढ़ी हुई है और मैंने मान लिया। किस चीज को मानना है? आप बैठे हुए कहते जाए मैंने जी मान लिया। क्या मान लिया? आपको पता भी है कि इन आयात में क्या है? वो चीज होती है ना जिसको हम मानते हैं। अब वो क्या है इसकी समझ ही नहीं, इसको कभी पढ़ा ही नहीं, आयात को जानते ही नहीं। अमल करना तो बाद में आता है। जब पता ही नहीं है, है क्या, तो मानना किस चीज का है? फिर तो सिर्फ मुंह की बातें हैं। तो लिहाजा जो मान लेना ना, बहुत बड़ी बात है। ये ऐसे ही कोई तोते की तरह मान लेना नहीं होता कि बस एक चीज रट ली भी है और कह दिया मैंने मान लिया मान लिया। अब चूंकि मुसलमान है तो कह सकते नहीं है कि नहीं माना। वैसे कुरान की आयतों के ऊपर मजाक भी उड़ा लेते हैं और उनको मौलवियों की बातें कह के भी रद्द कर देते हैं और उनको ऊपर कई उंगली भी उठाते हैं, कई बातों में ऑब्जेक्शन भी करते हैं, ये तो नहीं सही, ये तो कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, लो फिर हम क्या करेंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है, आखिर हमने दुनिया में भी तो रहना है। सब ऑब्जेक्शंस हैं, फिर मानना क्या हुआ? तो अल्लदीना आमनू भी आयातिना वकानू मुस्लिमीन, और वो थे मुसलमान। मुस्लिम का मतलब ये नहीं है कि मुसलमान नाम के थे, है ना? आज खैर लफ्ज भी आ गया, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। मुस्लिम तो होता ही प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिस के बगैर तो मुस्लिम होता ही नहीं है। इन शायद कुछ लोग समझते हैं कि मुस्लिम एक वर्ड है सिर्फ जो किसी का नाम रख लिया जाता है। नहीं जी, मुस्लिम का मतलब होता है फरमा बरदार। फरमा बरदार इस्लाम सबमिशन का नाम है, और मुस्लिम वो होता है जो सबमिट कर देता है, झुक जाता है, मन चाही नहीं रब चाही जिंदगी गुजारता है, वो मुस्लिम होता है। और हम अपने आप को मुस्लिम मुस्लिम कहते रहे लेकिन मर्जियां हमने अपनी करनी है, फरमा बरदारी के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम फरमा बरदारी को समझते ही नहीं क्योंकि फिर हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे ना अगर फरमा बरदार हो गए तो। और पूरी फरमा बरदारी तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं क्योंकि उससे तो बिल्कुल ही पता नहीं आप क्या बन जाएंगे। पूरी नहीं, थोड़ी, पार्शली, पार्ट टाइम मुस्लिम। पार्ट टाइम मुस्लिम क्या होता है? पार्ट टाइम मुस्लिम है जी, और हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम तो नहीं है, फलां प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, पता नहीं ये टर्म्स खुद ही से बना ली। अल्लाह के यहाँ तो सिर्फ मुस्लिम है, यहाँ तो कोई मुस्लिम है या नहीं है, और मुस्लिम वो है जो फरमा बरदार है। तो अगर फरमा बरदारी ही नहीं तो मुस्लिम नहीं हुए। और जहां पे ये देखो, मुस्लिम किसे? इस्लाम से। एक होता है ईमान और एक होता है इस्लाम। ईमान और इस्लाम अगर अकेले आए तो फिर तो इस्लाम के अंदर ईमान भी है, और ईमान आ जाए तो ईमान के अंदर इस्लाम भी है। लेकिन अगर अलग अलग आए, जैसे यहां पे आए, पहले आमन हुए फिर मुस्लिम है, ईमान है फिर इस्लाम है, तो ईमान क्या होता है? अंदर ईमान, अंदर होता है, अंदर का यकीन। और इस्लाम क्या होता है? जो जाहिर में इताअत करना, जो आप बाहर से इताअत के काम करते हैं, अमल करते हैं, उसको फरमा बरदारी के काम करते हैं, उसको इस्लाम कहेंगे। फिर आप जाहिरी अहकामात की पाबंदी। तो अब ये देख लें कि यहां पे अंदर का भी बात आ गई, बाहर की भी बात आ गई। और हम क्या कहते हैं? हमारे दिल इतने पाक हैं, आपको क्या पता, आप बस बजाहिर से देखते हैं, तो जाहिर में अगर मैं ऐसी लगती हूं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा दिल तो बहुत अच्छा है, मेरा दिल तो बहुत नेक है। तो देखिए यहां पे दोनों चीजें ही आ गई, आपका दिल भी नेक होना चाहिए और आप बाहर से भी नेक होने चाहिए, बाहर से भी अल्लाह के फरमाबरदार पता चलना चाहिए। इनमें से एक चीज भी एग्जेम्प्टेड नहीं है। ऐसे लोगों के लिए फिर ऐलान होगा, उदखुलुल जन्नत अंतुम व अजवाजुकुम तुहबरून, के दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम भी और तुम्हारी जोड़े भी, तुम्हारी बीवियां भी। बीवियां भी मुराद है, और वैसे भी जोड़े या वैसे भी साथी, साथी के लिए भी आते हैं जिनके साथ मिलके आप रहते हैं। तो यानी दोस्त, अहबाब, साथी, औलाद सब भी इसके अंदर आ गए, लेकिन खास तौर पे बीवियां जो भी फरमा बरदार थी। और तोहबारून, तोहबारून हिबर से है, और इसका मतलब क्या होता है? खुशी, खुश होना। और खुशी के अंदर हबूर कहते हैं शिद्दते सुरूर, बहुत ज्यादा खुशी, ऐसी खुशी जिसको कोई चीज खराब ना कर सके। हबूर, लोग नाम भी पूछते हैं ना कि कौन सा नाम अच्छा है। देखिए ये कितने प्यारे प्यारे नाम आपको कुरान से ही मिल जाते हैं। तो तोहबारून में यानी आपको पता चलता है कि खुशी खुशी होगी और खुश रखा जाएगा उनको वहां पे। ऐसी ऐसी चीजें होंगी, आप फिक्र ना करें, जो लोग पूछ रहे हैं ना कि बोर तो नहीं होंगे, अल्लाह ताला ने फरमा दिया तुम्हें खुश रखा जाएगा। आपको बता दिया जाए कि आप वहां पे आए, आपको ऐसा खुशी का सामान है वहां पे, आप खुश ही खुश रहेंगे, हम मेक श्योर करेंगे आप बोर ना हो, तो आप कितने खुश होते हैं। अल्लाह ताला जब खुशी का इंतजाम कर दे तो फिर इंसान कैसे सोच सकता है कि वो बोर हो जाएगा। इतना खुशी का सामान होगा जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कि तुम्हारे लिए वो होगा, आगे आ रहा है ना, वो होगा जो किसी आंख ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल के ऊपर उसका गुजर हुआ। तो हम कैसे जान सकते हैं क्या क्या सामान होगा? ना मुझे पता है ना आपको, हम सोच ही नहीं सकते। जो जी भी जन्नत की नेमतें हैं ना, जो कुरान करीम में बताई गई हैं, वो सिर्फ हमें एक यानी कोई एक सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बताई गई है। हम चूंकि उन चीजों का अंदाजा ही नहीं कर सकते। जब कह दिया गया ना दिल पे भी उसका गुजर, देखना तो दूर की बात, सुनना चलो कोई चीज सुन ही ली होगी, नहीं देखी होगी तो सुनी भी नहीं है। अब अच्छा दिल में ही ख्याल आता, हम दिल में सोचते रहे, बहुत दफा हम बड़े खूबसूरत सीन्स का, जन्नत ऐसी होगी, ऐसी होगी, शायद ऐसी होगी, आंखें बंद करते हैं सोचते हैं जन्नत तो पता नहीं ऐसी होगी, कोई भी हमने जो कुछ हमारे दिमाग बना सकता है हम उसको सोचने लगते हैं, वो वैसी भी नहीं है, क्योंकि दिल में भी उसका ख्याल नहीं गुजरा। ऐसी ऐसी वहां पे चीजें, तो फिर बस हम यही कह सकते हैं कि वो है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी एक मखलूक है जन्नत, ऐसी बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और वो उसमें तहबरून खुश रखे जाएंगे। और इसका मतलब, तहबर का मतलब मुजयन करना भी है, चमका देना, यानी वहां इतनी खुशी भी होगी, चमका दिया जाएगा, चेहरे भी चमक रहे होंगे, वजूह हुई यौम इज़ मुस्फिरा दाहिकत मुस्तबशीरा, उस दिन चेहरे भी रोशन होंगे, खुश होंगे, खिलखिला रहे होंगे। तो तरोताजा, कहीं पे आता है तरोताजा होंगे चेहरे। तो इसलिए हम इस चीज की तो फिक्र ना करेंगे वहां पे कोई बोरियत है, वहां पे कोई खुशी अधूरी नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा, कोई उदासी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम नाम की चीज वहां पे है नहीं, और खुशी बढ़ती ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी उकता जाए इंसान के, ओ अच्छा मेरे पास तो सारी चीजें आ गई, अब क्या रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं जब सब कुछ ही मिल जाएगा तो फिर इंसान तो उकता ही जाएगा, यानी इसका मतलब है कि कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो फिर यहाँ पे मारे मारे क्यों भागते हैं, फिर यहाँ पे भी आराम से बैठ जाए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मिल गया तो फिर तो उकता जाएंगे ना, नहीं यहां मैं भाग से जाते। देखो शैतान कैसी कैसी दिमाग में चीजें डालता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को फरमा बरदारी में, अल्लाह की फरमा बरदारी में लगाया, उसकी आयात पे ईमान रखा, तो आज देखो उनके लिए कैसे ऐलान हो रहे हैं। युतआफ़ु अलैहिम बिस्सिहाफ मिन ज़हबिन व अकवाब, उनके पास फिराए जाएंगे, गर्दिश कराए जाएंगे, यानी कोई गुलाम होंगे, गुलाम होंगे जो इनके आगे चीजों को लेके फिराएंगे। कहते कुर्तुबी ने लिखा है अपनी तफसीर में कि अदना दर्जे का जन्नती भी जो होगा ना, अदना दर्जे का, उसके भी 70,000 गुलाम होंगे, 70,000 सोने के प्याले लेके वो घूमेंगे, और उनमें हर एक में अलग अलग जायके के मशरूब होंगे। और आला जन्नती के तो पास 7 लाख गुलाम, 7 लाख सोने के प्याले गर्दिश कर रहे होंगे। अल्लाह अकबर, यानी ये नौजवान गुलाम होंगे जो मोतियों की तरह होंगे, वो भागते फिर रहे होंगे लोगों के आगे, जैसे ट्रे करते हैं
चक्कर लगा रहे होंगे, एक आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा, कोई कुछ लेके आ रहा है कोई कुछ लेके आ रहा है, और बड़े बड़े थाल हैं, तश्तरियां, उनमें खाने हैं और प्याले हैं और उनमें सर्व किया जा रहा है। जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप रेस्टोरेंट का तो भी ले भी नहीं सकते आप, लेकिन फिर भी यानी आपको उठ के नहीं उसमें जाना पड़ता, बैठे बैठे ही आपके सामने आती है, लेकिन वो भी इतनी देर में आती है कि आपकी भूख खत्म हो जाए, और फिर वो भी बाज दफा आपके टेस्ट का नहीं होता। वहां पे ऐसी सी चीजें आएंगी कि इंसान, मिसाल के तौर पे ये भी बताया जाता है कि इंसान अपने मुंह में एक फल डालेगा, और मिसाल के तौर पे अंगूर डाला, तो अब दिल किया कि हाँ ये अनार होता ना तो कितना अच्छा होता, तो उसका जायका मुंह में ही चेंज हो जाएगा, अनार बन जाएगा। फिर जहन में आता है हाँ देखो सेब होता तो कितना अच्छा होता, उसके मुंह में ही वो सेब बन जाएगा, सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह जो बर्तन होंगे वो उसके सामने आएंगे, और फिर उसके बाद जब वो उनमें अपने यानी हाजत उसकी पूरी हो जाएगी, जो भी जितना पीना चाहता है पी लेगा, तो वो बर्तन वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, सुभान अल्लाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में जो पहला गुरु दाखिल होगा वो चौदहवीं रात के चांद की तरह होगा, यानी उनकी सूरतें ऐसी ही चमक रही होंगी, उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आते हैं ना तो खबर, उन्होंने आपको बताया इसमें चमक का भी माना है, उनके चेहरे ऐसे चमक रहे होंगे, ना वहां पे थूक होगा, ना नाक साफ करेंगे, ना वो जन्नत में रफा हाजत करेंगे, उनके बर्तन और कंघियां सोने और चांदी की होंगी, उनकी अंगीठियों में ऊद होगा, ऊद सुलगती हुई, यानी इसका मतलब एयर फ्रेशनर भी होगा, वहां पे बदबू भी नहीं, और इनका पसीना मुश्क की तरह होगा, पसीना भी ऐसा आएगा कि पसीने से भी बदबू नहीं आएगी, खुशबू खुशबू होगी, पसीना में खुशबू होगी, और पेशाब पखाना तो होगा ही, सुभान अल्लाह। और इसी वजह से दुनिया के अंदर ये सोने चांदी के बर्तनों से मना किया गया, क्योंकि मोमिनों के लिए आखरत में होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये चीजें दुनिया में इनके लिए हैं और हमारे लिए आखरत में, हमारे लिए आखरत में होंगी, तो सोने के वहां पे होंगे, दुनिया में ये सोने से परहेज करते थे ना, सोने और इसके जेवरात से, जन्नती जो आदमी थे, और फिर सबको ही मना है सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पीना, लेकिन वहां पे सोने और चांदी के बर्तनों में उनको खिलाया जाएगा। अल्लाह हु अकबर, वफीहा मा तश्तही हिल अनफुस, और उनके लिए वहां पे वो सब कुछ होगा जो उनके नफ्स तमन्ना करेंगे। देखें नफ्स आज तमन्ना करता है, लेकिन आज जो इस नफ्स की तमन्नाओं को, जो अल्लाह की नाफरमानी की है, उन ख्वाहिशात को नफ्स की दबा देता है, रोक लेता है अपने आप को, अल्लाह ताला वहां पे उसके फिर नफ्स की सारी ख्वाहिशात पूरी कर देगा, क्योंकि इसने दुनिया में अपने नफ्स को रोके रखा ना, वमन खाफ मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोका, क्योंकि नफ्स बस नफ्स कहता है खाओ पियो मजा करो, नफ्स को ना दिल नहीं चाहता कोई मेहनत करने का, नफ्स को दिल नहीं चाहता कि वो कोई ऐसी चीजें, कोई पाबंदी की जिंदगी गुजारे, नफ्स चाहता है बस आजाद कर दो मुझे, मैं जो मर्जी करूं जैसे मर्जी चलूं, कोई पूछने वाला ना हो, नफ्स ये चाहता है सोते रहो खाते रहो पीते रहो और मौज मस्ती करो, ये जिंदगी एक दफा ही मिलनी है, नफ्स ये करता है। लेकिन जब इंसान इस नफ्स की तमन्नाओं को अल्लाह की खातिर दबा देता है कि नहीं इन पे नहीं चलना, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए वहां पर फिर वो सब कुछ दे देगा जो ये नफ्स तमन्ना करेगा, वह तलज्जुल आयुन, और आंखें लज्जत पाएंगी वहां पे। देखें इंसान का हर उज्व ना डिफरेंट चीजों से लज्जत पाता है, जैसे जुबान है वो अच्छे खाने से लज्जत पाती है, नाक है तो वो अच्छी खुशबू से लज्जत पाती है, कान है तो वो किसी अच्छी बात से लज्जत पाते हैं, लेकिन एक है आंखों की लज्जत, आंखें खूबसूरत मनाजिर से लज्जत पाती हैं। आप देख लें कितना हम पैसा स्पेंड करते हैं वेकेशंस पे जाने के लिए, किसी सीनिक जगह को हम ढूंढते हैं कि वहां पे जाएं, कोई हिल स्टेशन कोई ऐसी जगह, बस वो बड़ी कहते हैं खूबसूरत है तो कहते हैं वहां पे चलूं, क्यों, कौन सी चीज लज्जत पाती है, आंखें। हम घरों में खिड़कियां क्यों बनाते हैं, इनसे बाहर देखें, आंखें लज्जत पाएं, हमारे पूरे जिस्म में ना सबसे ज्यादा जिसकी लज्जत के लिए हम, अगर आप नोट करें तो जिसका ख्याल करते हैं ना, वो आंखों की लज्जत है।
आंखों से खूबसूरत मंजर देखना चाहते हैं, आंखों से खूबसूरत चेहरा देखना चाहते हैं, आंखों से हम देखते हैं अपने आप को भी शीशे में अच्छे लगना चाहते हैं। सारी आंखों की लज्जत ही तो है। तो आंखों की लज्जत का अल्लाह ताला ने वहां पे सामान किया हुआ, सुभान अल्लाह। और आंखों की लज्जत में जहां जन्नत की सारी नेमतें आंखों की लज्जत का सामान होंगी, यानी इवन खाने भी इतने खूबसूरत से डेकोरेट किए होंगे, ऐसे ही नहीं दे दिए जाएंगे जैसे तैसे मर्जी दे दो, इतने खूबसूरत के खुश मंजर होंगे खाने भी और जितने मनाजिर वहां के। लेकिन सबसे ज्यादा जो लज्जत होगी वो अल्लाह ताला के दीदार से इन आंखों को होगी। ये नेमत वो होगी कि इसके सारे आगे सारी जन्नत की नेमतें इंसान को कम लगेंगी और वो कहेगा कि अल्लाह तेरा दीदार होता रहे। ये है पीक आंखों की लज्जत की। तो जब दुनिया के अंदर आंखें हराम से लज्जत पाना चाहें तो उनको याद कराएं कि एक दिन इन आंखों से अल्लाह का दीदार तभी हो सकता है जब आज अपनी आंखों को महफूज रखेंगे, जब आज अपने नफ्स की जो ये ख्वाहिश उठती है कि अच्छा इस तरफ को देखा जाए, ये मंजर देखा जाए, ये सीन देखा जाए, ये पिक्चर देखी जाए, ये वीडियो देखी जाए, और वो हराम है, वो गंदगी है, वो फहाशी है, तो फिर याद कर लें कि ये आंखें अल्लाह ताला को देखने के काबिल होनी चाहिए। इन आंखों ने उस रब को देखना है, इनको मैंने बचा के रखना हर गैर महरम पे नजर डालने से और हर ऐसी चीज पे नजर डालने से जो बुराई की है। इतनी प्यारी दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका लज्जत नजरी ला वजहिक व शौकी ला लिकाइक। अल्लाह मैं तेरे चेहरे को देखने की लज्जत का सवाल करता हूँ और तेरी मुलाकात के शौक का, कि फिर इस जिंदगी को ऐसे गुजारे कि वाकई अल्लाह ताला के दीदार के लिए अपने आप को काबिल बनाए। ये नजर, ये जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, ये बस अल्लाह की मुलाकात के शौक में ही गुजर जाए, कि मुझे इतना शौक हो कि मेरे रब से मुलाकात होनी, ऐसी जिंदगी को बचा बचा के रख, बच बच के चले बुराइयों से, कि वाकई जब किसी चीज का शौक लग जाता है ना तो फिर इंसान उस शौक की खातिर कुछ भी करता है। जिसको अल्लाह से मुलाकात का शौक लग जाए, कौन सा वो दिन होगा मेरे रब के साथ मेरी मुलाकात हो जाए, वो कौन सी वो घड़ी होगी कि मेरी नजरें उसका दीदार करेंगी। तो क्या चीजें हैं ये दुनिया की, फिर तो कोई चीज से भी बाज रहना कोई ऐसा मुश्किल काम तो नहीं। हम शौक की खातिर क्या क्या नहीं करते, किसी की मुलाकात का शौक होता है तो हम लंबे लंबे सफर भी करते हैं उनसे मिलने के लिए। सोचें कि वो क्या दिन होगा जब अल्लाह ताला फरमा दे या इबादी ला खौफुन अलैकुम अलयौम वला अंतुम तहज़नून, या कितनी बड़ी खुशखबरी होगी एक इंसान के लिए कि वो उठा है और घबराहट के अंदर है और परेशानी के अंदर है और एक नफसा नफसी का आलम अफरा तफरी मची हुई है उसके इर्द गिर्द, पता नहीं अब होना क्या है मेरा, आए मेरा बनेगा क्या, उस वक्त ऐसी खुशखबरी आ जाए, सुभान अल्लाह। देखिए ना, अब मिसाल के तौर पे कोई इंसान किसी जगह जाता है तो वो परेशान होता है, सफर भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब आगे आपके लिए आपके कोई प्यारे खड़े में आपको वेलकम करने के लिए वहां पे एयरपोर्ट पे फूल लेके खड़े में, हार पहनाने को खड़े में, और आपके बहुत प्यारे हैं वो, तो सारे सफर की थकान भी भूल जाती है, पीछे के सारे गम भी भूल जाते हैं, हम कहाँ से आए, किनको छोड़ के आए, वो सब भूल जाता है। कयामत के दिन भी जब वो घबराहट से उठेंगे, कितना कब्र और मौत और जिंदगी में पता नहीं कितनी परेशानियां काटी, लेकिन अब जब उठे और जब ये ऐलान मिल गया ना, और फरिश्ते लेने आएंगे, फरिश्ते वहां पे हाथों हाथ ले रहे होंगे, इस्तकबाल करेंगे, और ये निदा आ जाएगी, अनाउंसमेंट ये हो रही होगी, तो उनकी खुशी का आलम क्या होगा जिस रब की खातिर अपनी सारी जिंदगी गुजारी। और उससे मुलाकात के शौक अपने आप को बचा के रखा, उनकी खुशी का आलम उस दिन क्या होगा। अल्लाहुम्मा जालना मिन, अल्लाह हमें भी उनमें से करना जिनके लिए ये ऐलान हो जाए। अल्लाहुम्मा जालना मिन। और जब उनको कहा जाएगा उदखुलुल जन्नत, दाखिल हो तो जो जन्नत में तुम भी और तुम्हारी अजवाज भी, लेकिन कोई खुशी भी ना तब पूरी होती है जब हमारे प्यारे भी हमारे साथ, वरना खुशियां भी अधूरी लगने लगती हैं। कहते फला नहीं है, आए फला भी होता ना साथ तो कितना अच्छा लगता। जब कोई लोग दूर परदेश में चले जाते, उनके प्यारे उनके पीछे मुल्क में होते, उनको कोई खुशी भी मिल जाती तो खुशी पूरी नहीं होती। खुशी तभी पूरी होती जब प्यारे साथ हो, तो अल्लाह ताला उनके प्यारों को भी साथ मिला देगा कि तुम्हारी खुशी अधूरी ना रह जाए। सुभान अल्लाह। वो फिर कितना सामान है लज्जत का, कितना सामान है जो चाहोगे मिलेगा। एक शख्स ने पूछा मुझे घोड़े पे सवारी चाहिए, क्या वहां पे घोड़े होंगे? क्या इंसान सोचता है तो जन्नत में क्या घोड़े होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, तुम्हें भाई घोड़े भी मिलेंगे, घोड़े पे सवारी भी करोगे, जब तक चाहोगे सवारी करोगे, लेकिन वो घोड़े ऐसे नहीं होंगे जैसे दुनिया में याकूत के घोड़े होंगे, वो उड़ाते फिरेंगे जन्नत में जहां चाहोगे। एक ने पूछा ऊंट होंगे वहां पे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ताला तुझे जन्नत में ले जाएगा ना तो जो तेरा जी चाहेगा तुझे मिलेगा, जिससे भी तेरी आंखें लज्जत पाए। यानी अब हर एक को जवाब देने की बजाय कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। एक ने कहा मैं खेती बाड़ी का मुझे बड़ा ही शौक है, जैसे को तो लोगों को होता है कि हमारी भी जमीन हो खेती बाड़ी हो, तो उसने कहा मुझे उसका बड़ा शौक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वहां पे खेती होगी और वो खेती फौरन उग भी जाएगी, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब आप कहेंगे मुझे ये मिल जाए, अब आने वाले सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाब दे दिया। उसने तो ऊंट का पूछा था ना, हम कहें हमें ऊंट और घोड़ों से क्या, हमें तो कोई ऐसा चाहिए वो फलां गाड़ी चाहिए, या फलां हमें तो अपना हमारा एक अपना जहाज होना चाहिए वो चाहिए। जिसको जो भी उसका जी चाहेगा वो मिलेगा, एक जवाब ने सबको सेटिस्फाई कर दिया, जिससे भी तुम्हें लज्जत मिले। अल्लाह अकबर। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान को कोई चीज मिल जाए तो साथ ही ये धड़का लग जाता है, हाय मेरे से खो ना जाए, हाय मेरे से दूर ना हो जाए। कोई प्यारा ही है इंसान को हमेशा ये दिल में एक वो रहती है कि अल्लाह मेरे से दूर ना कहीं चला जाए, कोई नेमत हो तो अरे मेरी मेरे नेमत खो ना जाए। सेहत की नेमत है, हर वक्त डर रहता है कोई बीमारी ना लग जाए। तो वहां पे वो अंतुम फीहा खालिदून, और तुम हमेशा रहने वाले हो, ये भी ऐलान होगा, सब ऐलान कर दिया जाएगा उनके लिए। अब उनकी सोचें कि खुशी की इंतहा क्या होगी। और तिलकल जन्नत उल्लती उरिस्तुमूहा, ये जन्नत है तुम्हारे लिए जिसके तुम वारिस बनाए गए हो। वारिस किस तरह? वारिस इस तरह कि देखें विरासत जब किसी को मिल जाती है ना तो फिर मुकम्मल उसका इख्तियार होता है, उसका उसका मुकम्मल कब्जा होता है, ठीक है? तो उस लिहाज से भी दूसरी ये बात भी कि विरासत जो है किस कोई छोड़ता है तो दूसरे को मिलती है। तो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के लिए जन्नत में एक जगह बनाई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने वो काम किए कि जहन्नुम में चले गए, अब उनकी जगह तो खाली रह गई, तो उनकी जगह भी इनको विरासत में मिल जाएगी। तो तिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, इस वजह से कि जो तुमने अमल किया, ये उनकी हौसला अफजाई के लिए है। हालांकि अमल इंसान का जन्नत की कीमत नहीं बन सकता। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा अमल भी मुझे जन्नत में नहीं ले जा सकता, यानी इतना बड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बढ़ के कौन अमल कर सकता है। लेकिन आपने फरमाया मैं भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में जा सकता हूँ। तो सोचे कि फिर यहाँ पे क्यों कहा गया बिमा कुंतुम तामल, इनकी एक तो हौसला अफजाई के लिए कि जो तुमने अमल किया, हालांकि वो तो छोटे छोटे अमल थे, नेकियां तो छोटी छोटी थी, कहाँ वो और कहाँ जन्नत की नेमत। ऐसी वो देखे नेक अमल कितनी देर के लिए किए होंगे, अगर 100 साल की किसी की जिंदगी है, कितने उसमें उसने कितने साल नेकियां कर ली होंगी? चलो बहुत भी कर लें 80-90 साल कर ली उसने नेकियां, चलो 100 साल भी किसी ने नेकी कर ली, जन्नत तो इन्फिनिट है, कभी खत्म नहीं होने वाली, बेहिसाब है वहां पे। तो खैर हुआ बका है, बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। तो इनका तो 100 साल का हिसाब, इनको यहीं पे 100 साल तक इनको जन्नत मिल जाती, उसके बाद खत्म हो जाता, वो भी बहुत ज्यादा था। लेकिन देखो अल्लाह ताला ने उससे बढ़ के, ये अल्लाह का फजल है और उसकी रहमत है, उससे बढ़ के उनको इनाम दिया। सिर्फ तुम एक छोटी सी अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह की फरमाबरदारी कर लो कि मुस्लिम बन के जियो, मुस्लिम बन के, वाकई वाले मुस्लिम हो, रियल मुस्लिम, फेक मुस्लिम नहीं, पार्ट टाइम मुस्लिम नहीं, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं, तो है ये जन्नत तुम्हारे जो तुमने अमल किया है। और दूसरी बात ये भी कि ये एक तो उनको शाबाशी के लिए ये कहा गया कि जो तुमने, दूसरी बात ये क्या कि जब इंसान नेक अमल करता है तभी अल्लाह ताला की रहमत उसके लिए आएगी। यानी कि हम कहना शुरू जाएं अमल से क्या होता है, अमल से थोड़ी जन्नत मिलनी है, चलो ये तो अल्लाह की रहमत से ही मिलनी है, तो लिहाजा फिर कोई जरूरत ही नहीं हमें अमल करने की, हम आराम से बैठते, जाना होगा तो चले जाएंगे। नहीं, अमल फिर भी आपको करना है, क्योंकि ये अमल के बाद ही अल्लाह की रहमत आएगी। जाना तो अल्लाह की रहमत से ही है, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारे अमल देखेगा और उसी पर रहमत करेगा जिसके पास नेक अमाल होंगे, तो उनको एक तरह से एनकरेज, या उनको एक तरह से शाबाशी दी जा रही है, तुमने बड़े अच्छे नेक काम किए, ये देखो ये उनका इनाम है। कोई कह दे ना ऐसे तारीफ कर दे, दुनिया के अंदर तो इंसान कितना फूले नहीं समाता, ये जी आपने इतना अच्छा काम किया ना, ये उसका इनाम, या रब्बुल इज्जत कह दे कि ये तुम्हारे अमल का, तो कितनी उनके मैंने इंसान कितना अच्छा फील करेगा। लकुम फीहा फाकिहतुन कसीरा तुम मिनहा ताकुलून, इसमें तुम्हारे लिए फल हैं बहुत सारे, यानी हर किस्म के फल जो कि खत्म ना होने वाले बहुत सारे हैं, इसका डर नहीं होगा कि कहीं खत्म हो जाए, कम हो जाएंगे, हाँ इतने खा लिए तो फिर उसके बाद पता नहीं बाकी भी जो जिंदगी खाने हैं, तो ये अभी खत्म कर लिए तो फिर क्या होगा, फिक्र होती है ना इंसान को। घर में भी कोई चीज हो तो कहते हैं अच्छा अभी देखो ये अभी हमने चलानी है इतने दिन, लेकिन वहां पे कोई डर नहीं है। कसीरा तुम मिनहा ताकुलून, उसमें से तुम खाओगे, इसमें ड्राई फ्रूट भी और दूसरे फ्रूट भी सब तरह के। उसके बाद आगे मुजरिमीन का हाल बताया गया, और खास तौर पे उनका जो काफिर हैं, इसलिए कि जहन्नम जो हमेश की है वो सिर्फ काफरों के लिए ही है। इन्नल मुजरिमीन फी आदाबी जहन्नम खालिदून, बेशक मुजरिम लोग जहन्नम के अजाब में हमेशा रहने वाले हैं, कभी कोई खलासी नहीं है उनके लिए वहां से, कभी कोई निजात नहीं है उनके लिए वहां से, हमेशा हमेशा की जहन्नुम की तकलीफ है। और देखिए एक जगह मैं पढ़ रही थी, एक उन्होंने लिखा था कि ये डाइट आप सिर्फ 3 दिन कर लें तो आप के लिए ये बहुत अच्छी है आपके हेल्दी रहने के लिए, और मुश्किल है लेकिन जब लोग 3 दिन का सुनते हैं तो जो चीज भी थोड़े दिन की होती है लोग उसको करने के लिए फिर भी तैयार हो जाते हैं। वो थोड़े दिन का होना ना, हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़े दिन के होने की वजह से, सिर्फ 3 दिन की वजह से सब लोगों के लिए आसान हो जाती है। यानी क्या मतलब, पता चला कि जो भी चीज कम मुद्दत की होती है, इंसान को पता हो ना ये इसने अभी खत्म हो जाना है, ये एक तकलीफ है, या ये तकलीफ ही 1 साल की है बस उसके बाद खत्म हो जाएगी, या ये कुछ दिन की है उसके बाद खत्म हो जाएगी, तो इंसान फिर भी कुछ उसको हौसला हो जाता है। लेकिन जब उसको पता हो कि ये खत्म नहीं होनी, तो फिर वो बहुत मायूस भी हो जाता है, फिर उसके ऊपर तकलीफ और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती, और शदीद यानी डबल ट्रिपल हो जाती है, जिस वक्त उसको पता हो ना कि ये नहीं खत्म होनी, अब ये शुरू हुई है तो खत्म नहीं होगी। तो सोचे कि अजाब जहन्नुम के बारे में जब ये कहा गया कि वो हमेशा रहने वाला है, यानी कोई वक्फा नहीं है इसमें, कोई ब्रेक नहीं आएगी इसके अंदर, हमेशा हमेशा है और ना ही कोई एंड है इसका। ला युफत्तरु अनहुम, नहीं कम किया जाएगा इससे, और आहिस्ता आहिस्ता कम होना के, यानी इंसान सोचे कि ये अब जैसे आग दुनिया में जलाते, एक दिन तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके फिर कम होते होते फिर बुझ जाती है, तो शायद ये भी इस तरह हो जहन्नुम की आग, नहीं बल्कि जो दारोगा जहन्नुम है वो इस आग को भड़काने पे ही लगा हुआ है। भड़काता जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, जिब्राईल अलैहि सलाम के साथ गए थे, देखा था तो इस कदर करी शक्ल का एक आदमी था, इस कदर करी शक्ल का, बहुत हैबतनाक और बदसूरत, और वो मुसलसल भाग रहा था और आपको भड़काता जा रहा था, देख रहा था कहीं से आग कहीं कम ना होने पाए। अब वो तकलीफ दे चीज भी है और फिर वो कम भी नहीं होनी, मुसलसल है और उसके अंदर कोई ब्रेक भी नहीं है। यानी हदीस में आता है कि जहन्नमी उसको पुकारेंगे, दारोगा जहन्नुम को पुकारेंगे, इतना पुकारेंगे पुकारते जाएंगे, वो कोई जवाब नहीं देगा। फिर उसके बाद कई साल बाद उसका जवाब आएगा, बाज जगह आता है 1000 साल बाद वो जवाब देगा, वो कहेंगे हमारा थोड़ा सा अजाब कम ही कर दो, कम कर दो थोड़ा सा, हल्का कर दो थोड़ा सा, फरियाद करेंगे तो कहेगा कम नहीं हो सकता, वहम फी मुबलिसून, और वो इसमें मायूस हो जाएंगे। मायूस, मायूसी किस बात से कि अब कभी निजात हो सकती, बिल्कुल मायूस। और मायूसी ना उम्मीदी है, ना उम्मीदी जब इंसान को हो जाती ना कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, आप देखिए अल्लाह रहम करे, सबको महफूज रखे, लेकिन अगर डॉक्टर किसी को जवाब दे देते, हालांकि वो इंसान ही है और इंसान को पता है डॉक्टरों के हाथ में तो मेरी जिंदगी नहीं, जिसका ईमान है अल्लाह के ऊपर वो जानता है डॉक्टर के हाथ में मेरी जिंदगी नहीं है, लेकिन वो जब जवाब दे देना कि नहीं आपका कुछ नहीं हो सकता, और इंसान अगर नाउम्मीद हो जाता है, अगर वो उसका अल्लाह पर ईमान में कोई कमजोरी है, या वो समझता है कि डॉक्टरों के हाथ में ही जिंदगी है और इन्होंने कह दिया तो बस अब मैं मर गया, बस वो जो नाउम्मीदी है ना, वो उसको वक्त से पहले ही ऐसा कर देती है कि वो अपनी यानी सेहत की तरफ जा ही नहीं पाता। कहते हैं आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, विल पावर उसकी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो कहता अब नहीं कुछ हो सकता मेरा, वो नाउम्मीदी की वजह से बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ देता है और पहले से भी ज्यादा बीमार हो जाता है। क्यों? इसलिए कि नाउम्मीदी आ गई। तो ये नाउम्मीदी भी ना एक अजाब है, ये मायूसी एक अजाब है, ये इंसान के दिल में होती है, ये अंधेरा है। तो बाहर से भी अजाब और अंदर भी मायूसी, और मुबलिस मायूस होना, बिल्कुल अल्लाह की रहमत से मायूस। और अल्लाह ताला ने तो फरमाया वलन नजीदुकुम इल्ला अजाबा, उनके लिए कोई चीज ज्यादा नहीं होगी सिवाय अजाब, कम तो होना दूर की बात है, वो अजाब उतना नहीं रहेगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई लोग कहते लोग तो उसमें यूज टू हो जाएंगे, यूज टू नहीं होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह, हमने उन पे कोई जुल्म नहीं किया, हमने नहीं कोई जुल्म किया, वो अपने ऊपर खुद जुल्म करने वाले थे, वो खुद इस जगह तक पहुंचे, अपने आप को यहां तक लेकर आए, इस उसके अंदर अपने आप को डाला, इस आग के अंदर, इसमें पहुंचाने वाले, इस अंजाम तक पहुंचने वाले वो खुद थे। तो वो वहां पे चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, कभी अल्लाह ताला को पुकारेंगे, अल्लाह हमारा खात्मा कर दे, या अल्लाह हमारे से अजाब थोड़ा कम कर दे, या अल्लाह हमें एक दफा दुनिया में भेज दे, या अल्लाह हम कभी वो काम नहीं करेंगे जो पहले करते थे, या अल्लाह हम सब कुछ देने को तैयार हैं, हमें एक दफा वापस भेज दे, हमें एक दफा ब्रेक दे दे, हमारे अजाब को कम कर दे, चलो थोड़े दिन की ब्रेक मिल जाए, कि इंसान कोई मुशक्कत का काम भी कर रहा होता है ना, उसको भी ब्रेक चाहिए होती है, और ये तो अजाब है। ये इंसान कहता है कि थोड़ी सी ब्रेक मिल जाए, चाहे 2 घंटे की ब्रेक हो, मुझे थोड़ी ब्रेक तो दे दो, अजाब में तो किसी तरह की ब्रेक नहीं आएगी। ला यमूतु फीहा वला यहया, वो इसमें ना जिएंगे ना मरेंगे, ऐसे लगेगा कि मरने लगे हैं, बिल्कुल मरने लगे हैं, बस अभी मौत आई कि अभी मौत आई, वो मौत की भीख भी मांगेंगे, आगे यही बात आ रही है, वना दो या मालिकुल यकदी अलैना रब्बुक, ए मालिक अपने रब से कह के हमारा फैसला ही कर दे, वो कहेंगे अब हमें मौत ही दे दे,
ही आ जाए हमें, अगर हमें ब्रेक नहीं देनी, अगर अजाब हल्का नहीं हो सकता, तो दारोगा जहन्नुम से अब फरियाद करेंगे, जब मायूस हो जाएंगे ना कि अब निकल तो सकते ही नहीं है, अब ये हल्का भी नहीं हो सकता, अब निजात भी नहीं है कहीं, अब वापस भी नहीं दुनिया में जा सकते, सब रिजेक्ट हो गया, तो फिर कहेंगे अच्छा फिर अपने रब से क्या कि फिर ठीक है हमें खत्म ही कर देना, हम नहीं जीना चाहते। तो बाज जगह आता है कि मालिक 80 साल तक उनको जवाब नहीं देगा, बाज जगह आता है 1,000 साल तक जवाब नहीं देगा, फिर उसके बाद जवाब देगा, वाला इन्नकुम माकिसून, कहेगा तुम यहीं पे पड़े रहने वाले। अल्लाह हू अकबर अस्तगफिरुल्लाह। और एक जगह पे सूरह मोमिनून में भी आता है ना कि वो अल्लाह ताला को पुकारेंगे पुकारेंगे पुकारेंगे, अल्लाह ताला भी उनसे कहेगा कि अब दफा हो जाओ, मुझसे बात भी ना करो, और उनको धुतकार देगा जैसे कुत्ते को धुतकार आ जाता है, उनको धुतकार देगा अल्लाह ताला, और उनको कहेगा यहीं पे पड़े रहोगे तुम। तो अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह, कि यानी उनके लिए क्या होगा वहां पे अंजाम, कि उनकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। देखिए दुनिया में इंसान अल्लाह से मांग सकता है, दुनिया में इंसान अल्लाह ताला से फरियाद कर सकता है, रो सकता है, दुनिया में इंसान माफी मांग सकता है, अपनी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन वहां पर इंसान ये नहीं कर सकेगा, वहां पर इंसान फरियाद कर करके भी 1,000 साल की फरियाद के ऊपर भी उसकी फरियाद नहीं सुनी जाएगी। यहाँ पे दुनिया में एक दिन भी इंसान आंखों से आंसू बहा लेता है तो अल्लाह ताला उसको सुनने वाला है, अल्लाह ताला उसको माफ करने वाला है, सारी जिंदगी के गुनाहों को भी अल्लाह ताला माफ कर सकता है, वहां पे कोई माफी नहीं और वहां पे निकलना नहीं। लकद जिनाकुम बिल हक, उनसे कहा जाएगा कि हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे, वलाकिन अक्सरकुम लिल हक कारिहून, लेकिन तुम में से अक्सर हक को नापसंद करने वाले थे, यानी जहन्नमियों को भी कहा जाएगा। वैसे भी देख लें दुनिया के अंदर हक आ गया है ना, लेकिन अक्सरियत वाकई आप देखें दुनिया में हक को नापसंद करती है, हक आ जाता है उनके सामने सब चीज खुली तौर पे, अब देख ले ये हक है, ये कुरान हक है, इसके अंदर सारी जितनी बातें वो हक है, लेकिन कितने लोग हैं जो पसंद करते हैं, कितने लोग हैं जो इन अहकामात को समय ना वताना करके और उसके बाद इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, नहीं अक्सरियत इंसानों की ऐसी है, कुरान कहता है ना अक्सर हम फासिकून, अक्सर इनमें से फासिक हैं, यानी कसीर तादाद, अगर आप कसरत पे जाने लगेंगे ना कि जो लोग कर रहे हैं मैं वही करूं, तो हक को वो नापसंद करने वाले होंगे, आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे ज्यादातर, जो हक को नापसंद करने वालों की तादाद हमेशा ज्यादा रहेगी इस दुनिया के अंदर। आप देख लेना अंबिया के साथ मेजोरिटी जो होती थी, मेजोरिटी जो होती थी वो उनका इनकार करती थी, झुटला देती थी उनको, मेजोरिटी जो होती थी वो उनकी नाफरमानी करती थी, मेजोरिटी जो होती थी वो उनकी बातों पे अमल नहीं करने वाली होती, बहुत कम लोग होते थे जो उनके साथ खड़े होते थे, तारीख इंसानी में देख लें सारी। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमने बस उस तरफ चलना है जिस तरफ सब जा रहे हैं, सारों का तरीका वही है, अगर ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं ना, तो किसी माशरे में भी ऐसे लोग आपको नहीं मिलेंगे जो अक्सरियत हक को पसंद करती है, किसी माशरे में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो हक के साथ खड़े होने वाले ज्यादातर हों, चंद ही मिलेंगे, ये हमेशा ही ऐसा रहा, इसलिए ये ना कहें कि बस आज के जमाने में ही शायद ऐसा हो रहा है, नहीं हमेशा ऐसा ही रहा है, आज के जमाने में हमें ज्यादा मुश्किल आ रही है, नहीं हमेशा ऐसा रहा है, हक के साथ देने वालों को हमेशा सताया ही गया है, हक का साथ देने वालों को हमेशा उनका इनकार किया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है, उनके पीछे लोग पड़ते थे, उनको सताते थे, उनको झुटलाते थे, उनकी मुखालफत करते थे, हमेशा ऐसा हुआ है, कोई हम आज कोई नया अनोखा दुनिया के अंदर नहीं आ गए कि हम सोचे सारी दुनिया इस तरफ को चलेगी तो तभी हम चलेंगे, अगर आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसा कभी होगा नहीं, याद रखें, जैसे इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं ना, हर नेमत पाने वाले के लिए कोई हासिद होता है जो उस पर हसद करता है, और हर हक के लिए कोई होता है जो उसका इनकार करता है और उसको झुटलाता है, जब भी हक आएगा यानी जब नेमत मिलेगी तो साथ हसद जरूर आएगी, जब हक आएगा तो साथ उसको झुटलाने वाले जरूर मिलेंगे, और कैसे होंगे जो अक्सरियत ना पसंद करती, देखिए एक मानना तो दूर की बात है उनको पसंद ही नहीं आता,
उनके मयार पे ही नहीं उतरा, क्योंकि उनका अपना दिल कुछ और कर रहा होता है ना, कुछ और चाहता है। अम अबरमू अमरन फ इन्ना मुबरिमून। फिर आ गया कि ये जो कुफारे मक्का, जो अबरमू क्या होता है, जब पुख्ता इरादा कर लेना, ये इशारा है उस तरफ, जब दारुन नदवा में बैठे हुए वो ये बातें कर रहे थे कि इनको कत्ल कर दें, या इनको सूली चढ़ा दें, या इनको सॉरी इनको निकाल दें यहाँ से, या कत्ल कर दें यहाँ से, या इनको कैद कर दें। तो ये सब वो प्रोग्राम्स बना रहे थे, तो वो इरादा कर रहे हैं ना पक्के, उन्होंने फैसला कर लिया ना, तो अल्लाह ताला ने भी फैसला कर लिया। अम या सबूना अन्ना ला नस्मा हो सिर रहा हूँ व नजवा हूँ। वो क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला नहीं सुन रहा उनके राज की बातें, उनकी सरगोशियां, जो ये बैठे हुए वहां पे अपनी बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी को तो नहीं पता चलेगा। चलो तमाम कबाइल मिलके, अबू जहल ने यही मशवरा दिया था, तमाम कबाइल मिलके आपको कत्ल करने में शामिल हो जाए, ताकि किसी एक बंदे के ऊपर नाम ना आए और खून बहा का जो मुतालबा होगा वो भी कमजोर हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है, वो पक्का इरादा करते तो हम भी करते। अल्लाह ताला ने क्या पक्का इरादा किया कि फिर एक एक को चुन चुन के गज़वा बदर में कत्ल किया गया। और फिर देख लें कि इनका यही गुमान है कि जब भी लोग कोई भी साजिश करते हैं हक के खिलाफ, वो सब समझते हैं कि अल्लाह ताला को नहीं पता चल रहा, अल्लाह ताला को नहीं सुनेगा कि ये हम क्या बातें कर रहे हैं। जब कोई कहता है हम जाके अल्लाह ताला को वहां पे कह देंगे कि हमने तो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हो रहा था, तो अल्लाह ताला आज नहीं सुन रहा तुम्हारी बातें, कि तुम ये सोच रहे हो कि मैं वहां पे जाके ये बहाने बनाऊंगी, अल्लाह ताला को नहीं पता चल रहा कि तुम ये प्लानिंग कर रहे हो, वो तो आज भी सुन रहा है तुमने वहां जाके क्या कहना, और दिल के ख्यालात तक को वो सुनता है जिनकी कोई आवाज नहीं होती, वो उनको भी सुनता है। तो तुम्हारी सरगोशियां, तुम्हारी प्लानिंग्स, तुम्हारा नबी के खिलाफ कुछ बात करना, बला व रसूलुना लदैहिम यक्तुबून, क्यों नहीं हम सुनते हैं, यानी क्या वो ये समझते हैं कि हम सुन नहीं रहे, क्यों नहीं, इसका ये जवाब आया। और रसूलुना हमारे तो फरिश्ते लदैहिम इनके पास हैं, लिख रहे हैं, इनके पास बैठे हुए लिखते हैं, ये किरामन कातिबीन जो हमारे साइड्स पे बैठे हुए हैं ये लिख रहे हैं, नामा आमाल तो तैयार हो रहा है, यानी ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला खुद सुन रहा है बल्कि इनका रिकॉर्ड भी तैयार हो रहा है। कुल इन कान लिर रहमानी वलदु फअना अव्वलुल आबिदीन, कह दीजिए अगर रहमान का कोई बेटा होता, फिर वही वाली बात जो इस सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, या औलाद होती, वलद में औलाद भी आ गई सारी, कि मुशरिकीन मक्का फरिश्तों को जो अल्लाह की बेटियां कहते थे, तो मैं सबसे पहले उनकी इबादत करता, मैं उस औलाद की या उस बेटे की सबसे पहले मैं इबादत करता। क्यों? इसलिए कि पैगंबर जो होता है वो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का फरमा बरदारी करने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला होता है। तो अगर रहमान का कोई बेटा होता तो तुम तो बाद में करते, मैं सबसे पहले करता, लेकिन उसका कोई बेटा ही नहीं, लम यलिद वलम यूलद। तो इससे पता चलता है कि रहमान का कोई बेटा नहीं, वरना पैगंबर उसकी मुखालफत क्यों करते, क्योंकि जो बेटा होता है वो तो बाप का हिस्सा होता है, या औलाद अपने माँ बाप का हिस्सा होती है, औलाद की इबादत बाप की इबादत इबादत होनी थी, तो फिर तो मैं खुद ही उसकी इबादत करता। सुबहान और रब्बिस्समावाति वल अर्ज, सुबहान है वो तो पाक है, इससे ये एक ऐब है उसके लिए कि उसकी औलाद हो, इंसान के लिए एक शर्फ की बात हो जाती है कि उसकी औलाद हो, लेकिन अल्लाह ताला के लिए नहीं, उसके लिए ये एक ऐब की बात है कि तुम उसकी औलाद बताते। वो रब है आसमानों का और जमीन का, उसको औलाद की क्या जरूरत, रब्बिल अर्श, और रब है अर्श का, अर्श की खास तौर पे बात क्यों आई, इसलिए कि अर्श अल्लाह ताला की सबसे अजीम मखलूक है, जमीन व आसमान से भी ज्यादा अजीम और बड़ी मखलूक और खूबसूरत। अम्मा यसिफून, इससे जो वो बयान करते हैं वो पाक है, इससे जो वो बयान करते हैं वो तो रब है आसमान और जमीन का और अर्श का, वो क्या बयान करते हैं कि रहमान के लिए बेटा। फजरहुम, ए नबी अब छोड़ दें इनको, इनको छोड़ दें, यानी ये जो जो बातें कर रहे हैं कुफरिया बातें शिरकिया बातें, इनको छोड़ दें, यहूदू बहसें करें, ये पानी में उतरने के लिए आता है डीप उतर जाना, तो ये यही करते थे ना, बहसें कर रहे हैं इसके ऊपर, फजूल बातें कर रहे हैं, वही अलाबू अल खेलते रहे, यानी अब इनको आपने बता दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, आप इनके रवैयों के ऊपर ना अब आप मलाल ना करें, आप ना गम करें, इनको बहसें करने दें, इनको बातें करने दें,
इनको खेल तमाशे करने दें अपनी जिंदगी में, हत्ता युलाकू यौमहुमुल्लज़ी युआदून, अल्लाह ताला खुद ही इनसे निपटेगा। जिस दिन तक अल्लाह ताला के साथ इनकी मुलाकात नहीं हो जाती उस दिन तक इनको छोड़ दें, यानी फिर अल्लाह ताला खुद ही सवाल कर लेगा। आप अपना काम करते जाएं, आप इनके पीछे ना पड़ें, यानी आप हुज्जत तमाम हो गई ना, अल्लाह ताला हुज्जत तमाम कर देता है। तो ये फजूल कामों में लगे रहे, या लाभ क्या है फजूल काम, इधर उधर खेलते फिर रहे हैं फजूल कामों में लगे हैं। आपने बता दिया आपका काम मुकम्मल हो गया, और वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए अपना काम करके। अगर फिर भी हम खेल तमाशों में लगे रहे, बहसों में पड़े रहे, दीन में बहसे कर रहे हैं, मीन मेखे निकाल रहे हैं, ये ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, क्योंकि अमल का कोई इरादा ही नहीं है, तो अब कैसे इस चीज को पीछे करें, झुटलाएं कैसे, कैसे अमल ना ही करना पड़े। तो इसलिए कभी कुछ शोशे लेकर आ जाते हैं, कभी कुछ बातें करते हैं। वह लजी फिस समाई इला हूँ फिल अर्दी इला, वो अल्लाह तो आसमान में भी इला वही है और जमीन में भी इला वही है, आसमानों में भी उसी की हुकूमत और इबादत के लायक। इला कौन होता है? जिसकी इबादत की जाए। कौन है जो ये दावा कर सकता है कि आसमानों में वो इला है? पूछे मुशरिकीन से, जिनको भी कोई अल्लाह का शरीक ठहराता है, ठहराते हैं, वो क्या ये कह सकते हैं कि हम आसमानों पे हमारी हुकूमत है? आसमानों में भी अल्लाह ताला की हुकूमत और वही इला है, और जमीन में भी वही इला है, वहुवल हकीम अल अलीम, यानी जमीन में भी कोई और इलाह नहीं, सारा कब्जा कुदरत उसका है। बाज लोग कहने लगते हैं, ये बात को समझे, बाज लोग कहने लगते हैं खिजर अलैहिस्सलाम तो पानियों के ऊपर हुकूमत है, और उनको पुकारो जिस वक्त तूफान आते हैं। अल्लाह ताला की हुकूमत पानी पे भी है, और इलाह वो जमीन, सारी जमीन का इलाह वही है, कोई और नहीं है, यानी इबादत के लायक वही है। मांगना है तो उससे मांगो, पुकारना है तो उसको पुकारो, झुकना है तो उसके आगे झुको। ये इलाह ही इस काबिल होता है कि उससे दुआएं की जाएं, उससे हाजते मांगी जाएं। वो हिकमत वाला है और इल्म वाला है, और कोई और अल हकीम और अल अलीम नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत हिकमत किसी के पास हो सकती है, थोड़ा बहुत इल्म हो सकता है, वो भी कहीं से लिया हुआ। अल्लाह ताला का इल्म अपना है, उसको किसी ने नहीं दिया, वो खुद हर चीज जानता है, और उसका इल्म हमेशा से है, और उसका इल्म लिमिटेड नहीं है, और ना ही उसकी हिकमतें। वतबारक अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा, और बाबरकत है वो जात, यानी अल्लाह ताला बाबरकत है, उसके लिए बादशाहत है आसमानों की, जमीन की और उनके दरमियान। बाबरकत होना, तबारक का मतलब क्या? एक तो बरका कहते हैं खैर और भलाई को, खैरे कसीर को, खैरे कसीर, तो उसकी जात खैर और भलाई का मजमुआ है, उसकी जात में सारी खैर है। बियदि कल खैर, वो खैर ही खैर है, ठीक है, खैर और भलाई वाली जात। और दूसरा बरतर और अजीम, तो उसकी जात तबारक है। तीसरी बात, इसमें दवाम का माना भी है, हमेश की का, कि वो हमेशा बाकी रहने वाली जात है। जब हम एक दूसरे को कहते हैं ना आपको मुबारक हो, तो हम असल में उसके लिए खैर मांग रहे होते हैं, और ये कह रहे होते हैं कि ये आपकी जो चीज है वो हमेशा कायम दायम रहे, ठीक है। तो अल्लाह की जात है तबारक बाबरकत, और अल्लाह ताला की जात वो है जो बादशाहत रखता है आसमानों की और जमीन की, और जो कुछ उनके दरमियान है, ये भी आ गया यहाँ पर कि जो कुछ उनके दरमियान है। अब देखिए ना, आसमान और जमीन के दरमियान क्या कुछ है, इसको डिफाइन करें इंसान को तो पता भी नहीं है क्या कुछ आसमानों और जमीन के, लेकिन अल्लाह ताला की हुकूमत है इनके ऊपर, सबके ऊपर। फिर जब इंसान इस चीज पे यकीन रखता है ना, तो उसके बाद वो फिर किसी और दर पे जाके झुक नहीं सकता। फिर उसको अल्लाह ताला की अजमत का ख्याल आता है कि अल्लाह तू इतना अजीम, एक छोटे से मुल्क का बादशाह हो ना, हम उससे इतने इंप्रेस हो जाते हैं। हाँ जी, वो को सदर है बेचारा, वोटों से बना होता है, भीख मांगता है वोटों की, और उसके बाद फिर वो मुश्किलों से कभी कभी 4 साल कभी 5 साल के लिए बनता है, लेकिन हमारे दिल रोब से भर जाते हैं उसके लिए। और किसी मुल्क का बादशाह हो तो हम थर थर कांपते हैं, हाँ जी ये बादशाह, इसके खिलाफ कोई बात कर दी ना तो ऐसे जगह ले जाके जेल में डालेंगे कि
ऐसी जगह फेंकेंगे कि फिर उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिलता, ये फिर उसका कोई पुराने हाल नहीं पूछने वाला नहीं होता, पता ही नहीं चलता ऐसा गायब होता है, हम फिर इतना कांप जाते हैं। अच्छा फला मुल्क का बादशाह इतना पावरफुल है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है वो बादशाह आसमानों का और जमीन का और जो उनके दरमियान है, तो दिल रोब से क्यों नहीं भरता, दिल झुकता क्यों नहीं, डरता क्यों नहीं कि नाफरमानी उस बादशाह की, हुकूमत उसकी है, सब टोटल कंट्रोल उसका है, वो जात कितनी बड़ी है जो आसमानों पे हुकूमत करे और जमीन पे और जो कुछ उनके दरमियान है। तो ईसा अलैहि सलाम को इसमें कहना कि वो खुदा है, वो कैसे खुदा हो सकते, खुदा तो वो है जिसकी बादशाहत इतनी बड़ी, आइंदा हो इल्मु सा, उसके पास कयामत का इल्म है, खास तौर पे ये इल्म की बात, उसके पास तो हर चीज का इल्म है, लेकिन यहाँ पे इसलिए ज्यादा इस चीज को मेंशन किया गया कि ये इल्म वो है जो किसी और जी नफ्स जी रूह के पास नहीं, ना किसी फरिश्ते के पास, ना किसी पैगंबर के पास, ना किसी वली के पास, किसी के पास है ही नहीं, ये सिर्फ उसके पास है, क्योंकि ये गैब की चाबी है, गैब की चाबी, और गैब की चाबियां सिर्फ उसके पास है। तो जिसको यही ना पता हो कयामत कब आनी है, वो खुदा कैसे हो सकते हैं, वो बताए ना कब आनी है। हमारे यहाँ भी किसी ने कह दिया अभी जब 12/12/12 था तो ये डेट जो थी ना इसके ऊपर कयामत आनी है, कुछ लोगों ने तो छुट्टी भी ले ली शायद, पता नहीं घर बैठ के सोचते थे कयामत से बच जाएंगे, फिर कुछ भी ना हुआ। अब बहुत उन्होंने कहा जी इसके ऊपर इतनी इसकी पेशीन गोईयां हैं जो ठीक हुई हैं, इस बंदे ने इतने हजारों साल पहले ये किताब में लिखा था, नहीं किसी के पास भी साथ का इल्म नहीं है, वही ले ही तो रजाऊन और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। वला यमलिकुल्लदीन यदउन मिन दूनी शफाअत, और नहीं मालिक शिफात के, कौन कौन नहीं है मालिक शिफात के, अल्लदीन यदउन मिन दूनी, जिनको वो पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, वो शिफात नहीं कर सकते, कयामत के दिन तो कोई बोल ही नहीं सकेगा, सूरह नबा में यही है ना, कोई बोल भी नहीं सकेगा उस दिन, सिर्फ एक आवाज होगी हम्स कि भाई सांसों की आवाज आ रही होगी बस, कोई जुर्रत नहीं करेगा, सिफारिश करना तो दूर की बात है, कोई कोई बुझ बोल एक गई नहीं मुंह से, सिर्फ जिसको अल्लाह ताला इजाजत दे वो बोल सकेगा। इतने वहशतनाक दिन में जिस दिन इंसानों को अपनी पड़ी हो कि नफसी नफसी की पुकार हो हर तरफ, इवन ये कि फरिश्ते और पैगंबर भी उस दिन हर तरह कांप रहे हैं, उस दिन कौन सोच सकता है कि हाँ जी अपनी मर्जी से हम सिफारिशें करेंगे, हम ये कह देंगे, हम वो कह देंगे, वो तो कोई भी जिनकी ये इबादत करते हैं वो तो सिफारिश का इख्तियार ही नहीं रखते। अगर कोई ईसा अलैहि सलाम को पुकारता है तो अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में फरमा दिया, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، जब उस दिन अल्लाह ताला फरमाएगा ए ईसा इब्ने मरियम क्या तूने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बना ले, तो ईसा अलैहि सलाम तो अल्लाह ताला से माफिया मांगेंगे, या अल्लाह मैंने नहीं कहा, तुझे मैंने कहा होता तो तुझे पता होता, या अल्लाह मैं कैसे कह सकता था, मुझे तो ये जेब ही नहीं देता, मेरे तो ये लायक ही नहीं है, शिफात करना कैसे होगा। वो कहते हैं जी ईसा अलैहि सलाम हमें बचा लेंगे, उस दिन वो सूली चढ़ गए थे ना, अब इसीलिए चढ़े थे कि कयामत के दिन हमें वो लेके जाएंगे जन्नत में, तो चाहे ईसा हो चाहे उजैर हो चाहे फरिश्ते हो चाहे कोई भी और माबूद बनाए हुए इन्होंने झूठे सितारे हैं या सूरज, या सूरज को भी लपेट के उस दिन जहन्नम में डाल दिया जाएगा ताकि इनको हसरत हो कि ये देखो इसको हम सोचते थे कि ये हमें बचाएगा, इससे हम मांगते थे, वो उस दिन क्या हाल होगा इंसानों का भी और पैगंबरों तक का, और ये सोचते हैं कि ये हमारी सिफारिशें करेंगे हमें बचा लेंगे, हमें उस दिन हम इनका दामन पकड़ लेंगे, ये औलिया अल्लाह हैं, ये अल्लाह के पास बड़े पहुंचे हुए हैं, ये बड़े प्यारे हैं, ये फलाह हैं, इल्ला मन शाहिदा बिल हक वहुम यालमून, सिवाय उसके जिसने हक का मुशाहिदा किया हो, हक की गवाही जो वो जो हक के साथ हो, मन शाहिदा जो गवाही दे हक के साथ, वहुम यालमून और वो जानता भी हो, उसके पास इल्म भी हो, जो हक बात कहे यानी, और उसके पास इल्म भी हो, जो साहिब इल्म। और ये कौन होगा जिसको अल्लाह ताला उस दिन चाहेगा, उसको ये शर्त देगा कि तुम शिफात करो, और वो शिफात के लिए फिर खड़ा होगा जो हक की शहादत देगी। यानी जो वाकई इस बात की शहादत देंगी कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये मतलब है हक क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जो हक की गवाही देने वाले होंगे और जो जानते भी होंगे, इनके पास इल्म भी होगा, यानी यकीन होगा उनको। वला इंसअलतहुम, और आपको पता है शिफात का मैंने अकीदे का पहले भी आपको बताया हुआ है कि जिसके लिए अल्लाह ताला चाहेगा उसके लिए शिफात का इजन देगा, और जिसको चाहेगा कि तुम शिफात करो वो ही शिफात कर सकेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के ऊपर बहुत सारे लोग तकिया किए हुए हैं कि इस पे डिपेंड करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात करेंगे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खुद फरमा दिया था कि याद रखना मैं तुम्हें इस हाल में ना पाऊंगा तुम्हारे सर पे बकरी हो जो ममिया रही हो, यानी चोरी की हो, तो तुम उसको लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए नहीं उस दिन कुछ कर सकता। ये ना हो कि तुम्हारे तुमने खयानत की चीज कोई की हो, खयानत की हो किसी चीज में, और तुम उसको लेकर आ रहे हो, और फिर तुम कहो कि मेरी शिफात करो, तो मैं नहीं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। ऐ फातिमा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, तुम अपने लिए खुद कुछ करना, मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं आ सकता। ऐ मेरी पुप्पी सफिया, मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कुछ नहीं काम आ सकता। वो अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेगा, यानी खुद उठ के पैगंबर भी अपनी मर्जी से, अगर उनको शिफात का हक भी दिया जाएगा लेकिन वो खुद अपनी मर्जियों से नहीं कर सकेंगे कि मेरा दिल कर रहा है, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की शिफात कर देते। ये सोचते नहीं है आप, इब्राहिम अलैहि सलाम अपनी बाप की शिफात कर देते, खलीलुल्लाह है, नहीं कर सकते। जब वो कहेंगे भी कि या अल्लाह मेरा बाप, या अल्लाह मेरा बाप, इससे मेरी कितनी बेइज्जती होगी, और तूने कहा था मुझे आज इज्जत देगा, मेरा बाप इस जहन्नुम में ले जाया जाएगा, इस सूरत में होगा, तो मैं कैसे, मेरी तो इसके अंदर इज्जत तो नहीं है। अल्लाह ताला उनके बाप को बिच्छू की शक्ल दे देगा और उसको टांगों से घसीट के जहन्नुम में डाला जाएगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन लोगों के खिलाफ भी गवाही देंगे, इन्होंने कुरान को छोड़े रखा था। तो शिफात भी इस चीज के ऊपर ना सोच के बैठ जाए, हमारी तो शिफात हो ही जानी है उस दिन, लिहाजा हमें कोई परवाह नहीं है। वला इंसअलतहुम मन खलकहुम, जब इनसे पूछा जाता है कि किसने तुमको पैदा किया, ला यकूलुन्नल्लाह, तो वो जरूर कहते हैं अल्लाह ने। इसलिए बाज मुफसरीन लिखा है कि जो मुशरिकीन है मक्का, ठीक है वो भी मुशरिक थे, आज का भी मुशरिक है, अगर मुशरिकों में कंपैरिजन किया जाए, शिर्क तो सभी बुरा है, सभी बुरा है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए कि किसका शिर्क ज्यादा बड़ा है, तो आज के मुशरिक का ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उस वक्त का मुशरिक फिर भी कहता था कि मुझे पैदा किया तो अल्लाह ने, आज का मुशरिक तो ये भी नहीं कहता। तो वो जरूर कहेंगे अल्लाह ने, अल्लाह ताला के वजूद को वो तस्लीम करते थे, ये प्रॉब्लम नहीं था। हम ये सोचते ना वो अल्लाह को नहीं मानते थे, अल्लाह को एक नहीं मानते थे, ये कहा करें, अल्लाह को नहीं मानते थे तो मानते तो थे, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, और ये भी मानते थे कि अल्लाह ताला हमारा पैदा करने वाला है, हमारा खालिक है। अन्ना फकून, फिर कहाँ से तुम धोखा खा रहे हो, यानी क्या मतलब, फिर उसको इला क्यों नहीं मानते, फिर इला भी तो उसको मानो, इबादत भी तो उसकी करो, तुम मानते हो जिसने तुम्हें पैदा किया, इबादत भी तो उसकी होनी चाहिए, हमारे पर सबसे बड़ा एहसान उसी रब का है ना जिसने हमें पैदा किया, हम तो कुछ भी ना थे, उसने हमें वजूद दिया, बाकी चीजें तो बाद में आती है ना, खाना पीना सोना जागना आंखें कान, वो तो बाद में आते, हमें पैदा किसने किया, उसका सबसे बड़ा एहसान है, और वो ही इस काबिल है कि हम उसके आगे झुके। लेकिन लोग छोटी छोटी बातों पे उससे नाराज हो जाते हैं, उसने मुझे ये नहीं दिया अब मैंने नहीं नमाज पढ़नी, उसने मेरे ये दुआ नहीं कबूल की अब मैंने नहीं ये फरमा बरदारी करनी, अब मैं सब कुछ छोड़ रही हूँ। तो ये सोचो जिस वजूद को लेके तुम ये कह रहे हो कि मैं उसको छोड़ रही हूँ, ये वजूद किसने तुम्हें दिया, ये तो बिन मांगे ही तुम्हें दे दिया, तुम किधर फिरते जाते हो, किधर धोखा खा रहे हो। वकील ही कसम है इनके कॉल की, किनके? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही की ज़मीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही, और अल्लाह ताला ने अपने रसूल के कॉल की, उनकी बात की कसम खाई है। कौन सी बात जो आगे आ रही है? अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की भी कसम खाई है, और आपके सिवा किसी और की नहीं कसम खाई है, यानी किसी और इंसान की कसम नहीं खाई अल्लाह ताला ने, अपने नबी की कसम खाई है। कसम है इनके इस कॉल की, और वो भी कॉल की, या रब्बी इन्नहा उलाई कौम ला युमिनून, ए मेरे रब, ये मेरी कौम है, बेशक ये ईमान नहीं ला रहे। तो पैगंबर उनके हक में गवाही क्या देंगे, शिफात क्या करेंगे, वो उल्टा तो उनके खिलाफ गवाही देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि सूरह फुरकान में ये बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे वो उस दिन, और वो ये गवाही देंगे। जो लोग सोचते हैं ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो कुछ भी करते रहे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो उस दिन हमारी सिफारिश करेंगे, आखिर हम उम्मती जो हो गए, तो आपने क्या कमाल कर लिया उम्मती पैदा होने में? वो तो अल्लाह ताला ने आपको इस उम्मत में पैदा कर दिया, लेकिन आपका इसमें कारनामा क्या था ये बताएं। और नबी के जो वही का पैगाम वो लेकर आए, और उन्होंने सारी जिंदगी अपनी उसी वही के पैगाम को फैलाने में और हम तक पहुंचाने के लिए इतनी तकलीफें सही, उसको छोड़ा वह, तो उस दिन फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात तो नहीं पा सकते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सूरह फुरकान में क्या है, या रब्बी इन्ना कौम इत्तखजू हादल कुरआन महजूरा, ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने इस कुरआन को छोड़ दिया था। इसी तरह यहाँ पे वो कहेंगे, या रब, इन्होंने मेरी इस कौम ने ईमान नहीं ला के दिया, ये ईमान नहीं रखते थे। ये उनकी फरियाद का अंदाज है, ये उनकी एक शिकायत है, अल्लाह इन्होंने ऐसा किया। अल्लाह हु अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें ये बात भी अल्लाह ताला के नजदीक मतलब कितनी वैल्यू है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात की भी कसम खा ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह ताला के नजदीक कितना बड़ा है, लेकिन फिर भी आप अब्द ही हैं, अब्द ही हैं, कोई अब्द से ऊपर नहीं उठ गए। अल्लाह ताला ने कुरान में आपको अब्द ही फरमाया कि आप बंदे ही हैं, आप गुलाम ही हैं, आपका मकाम इससे ऊपर कर देना ये भी शिर्क है। फसफ अनहुम वकुल सलाम, ए नबी आप दरगुजर करें इनसे, इनको जाने दें, इनसे एराज करें, इग्नोर कर दें इनको। आपने पैगाम पहुंचा दिया, साहब आपकी पकड़ नहीं है इसके ऊपर। वकुल सलाम, और कहिए सलाम, ये नहीं कि उनको जाके अस्सलाम वालेकुम कह दें, बल्कि ये उसी तरह है जैसे हमने सूरह फुरकान में इबादुर रहमान की सिफात में पढ़ा था कि वो जाहिलों को कहते हैं सलाम, जाहिलों के साथ बहस मुबासे झगड़े करना, उनके साथ अपनी टेम्पर को लूज कर देना, चीखना चिल्लाना शुरू, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला अपने नबियों को भी क्या तलकीन फरमाता है, सलाम कहते हैं, यानी सलाम का मतलब क्या कि वो जो भी बात करें उसकी बात, उस बात के जवाब के अंदर आपने उनके लेवल पे नहीं उतरना, बल्कि खैर की बात से जवाब देते हैं, या उनके बात की जवाब में ऐसी बात करें जिससे आप बस उनके शर से महफूज रहें। तो आप तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए, क्योंकि फसौफ यालमून, अन करीब वो जान जाएंगे, उनका भी एक वक्त अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, उस वक्त उनको भी पता चल जाएगा कि कौन हक पे था और कौन बातिल पे था। तो जाहिलों के साथ हमेशा बजाय हम भी ये सीखें कि बजाय हम उनके साथ बहसें करना शुरू हो जाएं और सोचें कि मैं किस तरह से कुछ करूं, क्या मैं लेकर आऊं, किस तरह मैं इनको जवाब दूं, ऐसा जवाब दूं कि जो थप्पड़ बन के लगे, नहीं, आप हक बात कह दें, आगे वो बहसें करें ना, सलाम अलैकुम, बस ये छोड़ देने वाला सलाम है, यानी अब आपने उनको, तो यानी जैसे कहते हैं ना, तुम अपने रास्ते पे, मैं अपने रास्ते पे, बस फिर ज्यादा उनके साथ ना इन्वॉल्व नहीं होने की जरूरत, उनको भी पता चल जाएगा जल्दी, ऐसा नहीं होगा कि ये बात खुलेगी नहीं कभी, हक का उनको पता चल जाएगा अल्लाह ताला के यहाँ जाके। अल्लाह ताला इन आयात के ऊपर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
الحمد لله، جزاك الله خيرا.